थोड़ी सी बातें पीछे से, क्योंकि सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, लेकिन एक तो आखिरी मज़मून सूरत के नाम के नाते से ख़ास तौर पे सूरत शोरा है, तो हम देखेंगे कि इस्लाम शायरी के बारे में क्या कहता है। इशारे तो हो गए, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो सवालात जहनों में उभरते हैं उनके नाते से क्या, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस की सूरत में इस्लाम में शायरी के बारे में क्या है, यानी आप कह सकते हैं कि शायरी या पोइट्री के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि शायरी अपनी असल के अतबार से ना अच्छी है ना बुरी है। असल बात यह है कि उसका मौजू क्या है। दो चीज़ें होती हैं कलाम में, एक होती है शायरी और एक होती है नसर, पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री हो या प्रोज हो, अगर उसका टॉपिक बुरा है और बेहयाई की बातें हैं उसमें, तो जो मुकाम शायरी का है वही ऐसी वल्गर टॉक का भी होगा। हाँ, असल में इन आयात में जो बात बताएगी वो क्या है कि पोइट्री का असर दिल पे नसर की निस्बत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर ये असर कुरान के असर से भरने लगे तो पसंदीदा नहीं है। मिसाल देती हूँ कि अब कोई कुरान की तिलावत की बजाय हर वक्त नशीद ही सुनता रहे, इस्लामिक नशीद ही क्यों ना हो, ये पसंदीदा नहीं है। इंसान अपनी तबीयत के अतबार से माइल होता है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन शुरू में किसी को शौक़ दिलाने के लिए, चलिए गाने सुनता था तो अब आप उसको पोइट्री लगा दें, कलाम इकबाल लगा दें, कोई राइम्स लगा दिए, कोई इंग्लिश की अरबी की अच्छी ट्यून की लगा दी, इट्स ओके। इसीलिए आप देखते हैं कि ब्रेक्स में हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें भी मेरा तो बहुत सख्त होता है नुक्ता नज़र, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें चल जाती हैं जो मैं हूँ तो मैं ना चलाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी अल्फाज जिसमें हों जो पसंदीदा नहीं है तो उसको फिर हम मना कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये वो वक्त होता है जिस वक्त लोग बातें भी कर रहे होते हैं और थोड़ा सा उनको फास्ट करना मकसूद भी होता है। हम नॉर्वे में यही करते थे, अभी पता नहीं मुझे वो लोग क्या करते हैं, पूरे 20 मिनट की एक फाइल बनाई होती थी, क्लिप्स डालते जाते हो जाती, कोई मुश्किल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक के शुरू पर चलती थी और उस फाइल के आखिर में हमने सब स्टूडेंट्स को बताया हुआ कि अस्माउल हुस्ना चल जाए तो पता है आपको कि 3 मिनट रह गए क्योंकि वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 2 मिनट दुआए नूर, उससे और अलर्ट हो जाते हैं, 2 मिनट 5 मिनट हो गए और उसके बाद लबैक 1.5 मिनट का। तो इसमें फिर ये होता है कि अस्माउल हुस्ना सुनते ही स्टूडेंट फारिग होकर फौरन समझते हैं कि अब ख़त्म हो रहा है, रैप अप किया, दुआए नूर चली, उसके दौरान वो आके बैठते हैं और लबैक के साथ ही क्लास शुरू होने की उम्मीद होती है। तो ये तो एक वो चीज़ है कि जिसको हम एक मौके की मुनासबत से इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की पार्टीज हैं, कोई हल्ला गुल्ला है, कोई खुशी का मौका है, अब आप कहते हैं गाने ना सुने, म्यूजिक ना चलाएं, इस तरह की चीज़ें इट्स ओके, जिसके अंदर सब चीज़ें ठीक है। क्योंकि ऐसे वक्तों में तिलावत चलाना असल में तिलावत की एक किस्म की तौहीन करना है, क्योंकि लोग बातें करना चाहते हैं और तिलावत का हमारे यहाँ एक कल्चर है कि फिर उसके बाद दुपट्टा भी सामने, और बाज़ दफ़ा तो लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं तिलावत सुन के कि कहते हैं कि जिसको बंद कर दीजिए क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और ये तो हराम है लाइक दिस। अदरवाइज जो शायरी जिसमें झूठ हो, फिक्शन हो, आप तौर पे भी देखिए, अगर इन सारी चीज़ों का आप शायरी लफ्ज पे रखें ना तो गाना विदाउट म्यूजिक आप कह लें, म्यूजिक के बारे में बात सूरह लुकमान में हो सकती है, इसलिए हम इस वक्त म्यूजिक को नहीं छेड़ रहे, हम इस वक्त गानों के बोल, शायरी के बोल, गजलें, महफिल गजलियात, इसका इस्लाम में क्या हुक्म है। तो देखिए, नाजायज मोहब्बत तो नाजायज ही होती है, वही शेर शौहर अपनी बीवी के लिए कहे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर एक अनमैरिड लड़की एक अनमैरिड लड़के के लिए कहती है तो वो गलत है। बात चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन वो किसी गलत जगह है। बस एक बात एक मर्द एक औरत से करता है और वो औरत उसकी बीवी है तो वो बात अच्छी है, और वही बात वो अपनी बहन या माँ से करेगा तो अच्छी नहीं है। तो बाज़ दफ़ा कलाम ठीक होता है, जिसके लिए कहा जाता है वो ठीक नहीं है। शादी के गाने टप्पे, अब आप देखिए वो भी क्या लगता है आपका, जिसका नाम दोनों के जोड़ के दोनों ससुराली रिश्तेदारों को आप एक दूसरे को गानों में अजीबोगरीब से नाम देते हैं, उसमें मजाक भी होता है, ठट्ठा भी होता है, लड़की को जहनी तौर पे तैयार भी कर देते हैं कि एक बड़ी होनहार किस्म की सास और बड़ी दरिंदा सिफ्त किस्म की नंदे तुम्हारे इंतजार में, तो इस तरह के नफरतों वाली चीज़ों में वो कहाँ से मोहब्बत लेकर आएगी। अवॉइड करने की ज़रूरत है, और यकीन करें कि ईमान का एक असर है कि फिर आपका गाने में दिल नहीं लगेगा। कुरान पढ़ने के बाद, कुरान की तरफ आने के बाद जो सबसे मुश्किल चीज़ मैंने देखा है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को लगती है, वो गाना छोड़ना। इसकी जगह अगर आप अच्छी चीज़ें करें और आप देखिए कि इसमें अल्फाज के वह शोराओ या तभी हमुल गाहबून, शायरों के पीछे भटके हुए लोग होते हैं, तो क्या मैं भटकी हुई हूँ? बात देखिए कि अमूमन जब भी आप कहीं भी पोइट्री या म्यूजिक और ऐसी चीजें देखेंगे तो आपके जहनों में क्या चीजें आएंगी? शहवानियत, लस्ट, मस्खरापन, हज, बेजा मुबालगा किस्म की तारीफ, कहीं किसी के खिलाफ नफरत, अदावत। अरबों में तो इतना रिवाज था कि एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ा दिया जाता था शेरों के जरिए। औरतें उनके साथ जंगों में सिर्फ इसलिए जाती थी कि वो शेर पढ़ पढ़ के, जिसको आप कौमी तराने कह लें या जिहादी नज़में कह लें, वो दूसरों को इस तरह से मायल करती थी, गैरत की बातें करती थी। बड़े गंदे शेर हैं, आप पढ़ के देखें जब सीरत पढ़ते हैं, कि जब वो औरतें मुसलमानों के खिलाफ अपने लोगों को पुकारती थी तो वो कहती थी कि आज तुम में से जो जाएगा वो हादरी के जौहर दिखाएगा, फिर हम उसको गले से लगाएंगी, हम उसको शराब पिलाएंगी। इस तरह की बातें सुन के वो बेबस हो जाते थे। तो इसलिए इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। अमूमन आप देखिए, जो भी लोग इस किस्म के हाई म्यूजिक या आप देखिए कैसी चीजों में पड़ जाते हैं फिक्शन में, तो आप देखिए अखलाक की बंदिशों से आजाद हो जाते हैं, जज्बात में भटक के कुछ भी कर देते हैं, कभी लुत्फ और लज्जत के परस्तार बन जाते हैं, नीम हेमानियत किस्म की चीज उनके दिलों में आ जाती है। और अमूमन देखिएगा, ऐसे लोगों की जिंदगी का कोई बुलंदतरीन मकसद नहीं होता, बिल्कुल एक अलग सोच है। एक बंदा जो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गोल लेके बैठता है, उसको तो ये बातें बड़ी छोटी लगती हैं। इसीलिए आप नोट करेंगे कि 18 से 20 25 साल की उम्र में जो लड़के होते हैं, अगर तो आप उनको शुरू से कोई गोल दे दें, कारोबार में लग गए या कोई पढ़ने पढ़ाने में लग गए, तो वो इन फिल्मों और गानों में नहीं जाते। जो यंग लड़के इस उम्र में रिलैक्स छोड़ दिए जाते हैं, पढ़ाई में तवज्जो नहीं, फिर ऐसा ऐसा रात को दोस्तों के साथ निकलना, फिर गाड़ियों में म्यूजिक सुनना और फिर लड़कियों के पीछे लग जाना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे में जरा से इंक्लाइनेशन भी अगर किसी में उम्र के लिए आते हैं, उम्र के तहत जो ही वो बच्चे मसरूफ हो जाते हैं, उनको होश ही नहीं होती। टीवी तो खोलना दूर की बात है, वो होश ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त मसरूफ होता है। तो जहनी तौर पर जब मसरूफियत दे दी जाए किसी को, तो उससे इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिर एक और चीज़ यह है कि क्या हमारे असलाफ या सहाबा कराम या सहाबियात भी इशार कहती थी, या उनका इशार के बारे में क्या मामला था? चंद रिवायतें पढ़ के सुना देती हूँ, इंशाल्लाह इससे आपका ये नज़रिया क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब ये आयत उतरी थी तो चंद सहाबी, जिसमें अब्दुल्ला बिन रवाहा, हसान बिन साबित और काब बिन मालिक, ये तीनों शोरा के नाम से मारूफ थे, शेर कहते थे, ये तीनों रोते हुए अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, खुदाए जुल जलाल ने यह आयत नाजिल फरमाई है और शेर तो हम भी कहते हैं। तो आपने फरमाया कि आयत के आखिरी हिस्से को पढ़ो, मकसद ये था कि तुम्हारे अशार बेहूदा और गलत मकसद के लिए ना होते, इसलिए तुम इस्तिस्ना में दाखिल हो, यानी तुम इसमें शामिल नहीं हो। मुफसरीन कहते हैं कि इस इब्तदाई आयत में मुशरिकीन शोरा मुराद हैं, क्योंकि गुमराह लोग, सरकश शैतान और नाफरमान जिन इन्हीं के अशार की इत्तबा करते हैं और रिवायत करते हैं। रह गए इस्लाम में हमारे बारे में, इसमें क्या हुक्म है? रिवायत सुन लीजिए, उबई बिन काब की रिवायत है, फरमाए इन मिन शेरी हिकमा, बाज शेर हिकमत से भरपूर होते हैं। ये बुखारी की रिवायत है। कभी आपको कोई शेर सुनाया जाए, खास तौर पे जब अल्लामा इकबाल के, तो उसको पढ़ने से ऐसे नहीं फील होता कि ये बात तो हमें 2 घंटे में नहीं समझ आनी थी जो इस एक शेर से आ गई है। तो ये हिकमत के अशार होते हैं। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि हिकमत से मुराद सच्ची बात है जो हक के मुताबिक हो। इब्ने बिताल ने फरमाया, जिसमें इस्लाम से मोहब्बत का जिक्र, वो शेर मरगूब और महमूद है। और ऐसा ही शेर अच्छा होता है, बुरा शेर वो होता है जो फुहश बयान हो और जिसमें गलत बातें हो। उमर बिन सरीद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे उमैया बिन अबी सल्द के 100 काफिये तक अशार सुने। उमैया बिन सल्द दौरे जाहिलियत का एक बड़ा मारूफ शायर था। तो किसी मौके पर अल्लाह के नबी ने किसी से कहा भी सुनाओ, और अल्लाह के नबी हकीकत में लोगों को कंपनी देते थे, सीखने के लिए भी सुनते होंगे। बहरहाल फिर इसी तरह मुतरफ कहते हैं कि मैंने कुफा से बुसरा तक हजरत इमरान बिन हुसैन के साथ सफर किया और वो हर मंजिल पर शेर सुनाते थे, यानी जहां स्टॉप ओवर करते थे वहां शेर सुनाते थे। तबरी ने कुबार सहाबा और कुबार ताबेईन के बारे में कहा कि वो शेर कहते थे, सुनते थे और सुनाते थे। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत आयशा शेर कहा करती थी। अबू याला ने इब्ने उमर से रिवायत किया कि शेर एक कलाम है, अगर इसका मजमून अच्छा और मुफीद है तो शेर अच्छा है, और मजमून बुरा या गुनाह का है तो शेर बुरा है। ये फतहुल बारी की रिवायत है जो इमाम बुखारी की किताब पर शरह है। फिर इसके बाद आप देखिए कि तफसीर कुर्तुबी में है कि मदीना मुनवरा के फुकहा अशरा, यानी 10 बड़े फकीह जो थे, जो अपने इल्म फजल में मारूफ हैं, इनमें से उबैदिल्ला बिन उतबा बिन मसूद मशहूर कादिर कलाम शायर थे, और काजी जुबैर बिन बकार के एक अशार एक मुस्तकिल किताब में जमा है। قصہ مقصد یہ ہے کہ ساری بات کا خلاصہ میرے حال بات سمجھ آ گئی ہے کہ شعر و شاعری کی مذمت کیوں ہے، کیونکہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ، عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے. آپ یہ چیز مانتے ہیں؟ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، مثال ہے کہ کوئی ایسی فلم دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسی چیزوں میں مگن ہے، محفل میں بیٹھا ہے، اس وقت ان کو نماز پڑھنی ہوش نہیں رہے گی، قرآن اچھا نہیں لگے گا. امام بخاری نے اس پر ایک مستقل باب باندھا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کوئی شخص پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے. یعنی شعر یاد نہیں کرنے چاہیے، مراد وہی غلط اشعار ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آ جائے، اور اگر شعر مغلوب ہے تو وہ پھر برا نہیں. اسی طرح وہ اشعار جو فخش مضامین یا لوگوں پر تان و تشنی یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر ہوں، وہ باجماع امت حرام اور ناجائز ہیں. اور یہ کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ نثر بھی ایسی ہی ہوگی. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنر عدی بن نزلہ کو ان کے عہدے سے صرف اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فخش اشعار کہا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ربیعہ اور ابو الاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا. عمر بن ربیعہ نے توبہ کر لی تو وہ قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی اتنی محبت دے دے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ہوش نہ رہے. آپ کو تھا کہ عربوں کے جو بڑے بڑے شاعر تھے انہوں نے اپنا کلام جلا دیا تھا کہ اب قرآن کے بعد ضرورت نہیں رہی. اس وقت جب سورۃ کوثر نازل ہوئی کہ ان آتینک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک ہو الابتر، جب یہ کلام اترا لوگوں کو اچھا لگا، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا، تو ایک شخص تھا غالباً لبید اس کا نام تھا، جب اس نے اس کو پڑھا ان آتینک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانیک ہو الابتر، اس نے اس کے نیچے جا کے ایک چوتھی چیز لکھ دی، واللہ ما لا ھذا کلام البشر، قسم کھاتا ہوں کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو وہ اہل لغت ہے، اور جیسے ہیرے کی پہچان جو وہ جوہری کو ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو صاف پتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ لوگوں کو ایسی چیزیں چھوڑنی مشکل لگتی ہیں. دعا کریں، وہی دعا جو آپ کو بتائیے کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزہ و نفخہ و نفسہ. نماز میں بالکل ابتدا میں دعا استفتاح کے قریب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی اس نیت سے جب مرضی صبح و شام پڑھیں. دعا کریں، اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ان چیزوں سے دل بھر جائے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں بس سٹاپوں پہ، ٹرین اسٹیشنوں پہ، کہیں کوئی اچھی بک ہو نہ ہو، لیکن پوئٹری کی اور فکشن کی بک بہت ہیں. آج بھی اپنے نیٹ پہ ایک لفظ لکھ کے اردو کی دیکھیے تو آپ کو وہ ہوں گی. پھر اس میں جو جذبات کو بھڑکانے والے رنگ ہوتے ہیں، اور وہ ساری محبت جو ہوتی ہے وہ عموماً بغیر شادی کے ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو نہ رکھا جائے. باقی مجاہدین کو شوق دلانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ایک سوال آخری کر کے آگے چلتی ہوں کہ بھئی کیا ملک کی یا قوم کی محبت میں اشعار گائے جا سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جس کو ملی نغمے اور قومی نغمے کہتے ہیں. آپ سوچیے ذرا اس کو، جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ، اگر تو یہ محبت بھرے اشعار اور ترانے وہ لوگ گائیں کہ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اگر یہ سوچا جائے کہ ہاتھوں میں گٹار اور اس کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس لے کر ناچتے ڈرم بیٹتے ہوئے سنت سے خلاف چہروں والے لوگ صرف ایسے ترانے گا کر ملک کو آزاد کرا لیں اور اس کو عزت دے دیں، تو یہ تو اور بھی لوگوں کو دوسری طرف لے جانے والی باتیں. تو اگر محبت ہے ملک اور قوم کی، تو اس سے اوپر غالب اللہ اور اس کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے ادھر ہے کہ جب تمام نبیوں کا پیغام ایک تھا تو ان کی شریعتیں کیوں مختلف تھیں؟ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے. دیکھیے، نہ صرف یہ کہ تمام نبیوں کا پیغام ایک تھا، بلکہ حلال اور حرام بھی ایک تھا، فرائض اور سنت اور جو مستحبات ہیں وہ بھی ایک تھے، ماں سوائے چند چیزوں کے جو اس دور کی ضرورت تھی. مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ابتدائی دور تھا، تو اس دور میں ابھی انسانیت کو پروموٹ کرنا تھا، کہاں بچے ہوتے، کہاں شادیاں کی جاتی، ظاہر آدم اور حوا ہی کے بطن سے بچے پیدا ہونے تھے. تو اس وقتی اثر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی اور بہن کا نکاح ایک خاص شرط کے ساتھ حلال کیا تھا. جب ضرورت پوری ہو گئی، تھوڑی سی فیملیز بڑھتی گئیں، تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تعظیمی سجدہ کرتے تھے، ये वो दौर था कि जिस वक्त लोग अपने बादशाहों को और बड़े लोगों को सजदे करते थे, यानी इतना ज्यादा ये एक चीज सोसाइटी के अंदर आ चुकी थी कि इसको फिर वो लोग लेकर, यानी अगर एकदम उसको नो कह दिया जाता तो हो सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करते। तो इंसानियत को यूज टू करने के लिए ऐसा किया गया। फिर एक और इन्होंने लिखा है कि क्या खवातीन खवातीन के ग्रुप के साथ हज पर जा सकती हैं? तो मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, मेरा यही जवाब है। बाकी आपको इस पे कोई फतवा लेना हो, कोई भी बात हो, तो islamqa.com पे जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से आपको पता चलेगा। याद रखिए कि नेकियां अल्लाह के लिए करनी है ना, तो अल्लाह ही के हुक्मों से करनी है। इख्तलाफी मसला है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती, कोई जाता है तो आप उसको बुरा ना कहें, लेकिन अपने लिए हमेशा वो कोशिश करें कि अल्लाह ऐसा कभी करे ही ना कि हम अकेले हों। आप कम से कम अपने घर के एक महरम मर्द को इस बहाने अपने साथ तो ले जाएंगी ना कि भाई तुम चलो, शौहर नहीं है, बेटा, भांजा, भतीजा, अल्लाह सुभान तआला ने इतने प्यारे मीठे रिश्ते दिए हैं, तो आप किसी ना किसी रिश्ते के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। एक और रिवायत सामने आ गई अशार के बारे में। हजरत आयशा से पूछा गया कि क्या अल्लाह के नबी कभी अपनी तकरीरों में अशार इस्तेमाल करते थे? अब ये आज बहुत सारे मुबल्लिगीन का है ना मसला। उन्होंने फरमाया, शेर से बढ़कर आपको किसी चीज से नफरत ना थी, अलबत्ता कभी कभार बनी कैस के शायर का एक शेर पढ़ते थे, मगर अव्वल को आखिर और आखिर को अव्वल पढ़ जाते थे। पिछला मिसला पहले, बाद वाला पहले पढ़ देते थे। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह यूं नहीं बल्कि यूं है। तो आप फरमाते हैं कि भाई मैं शायर नहीं हूं, ना शेर कोई मेरे करने का काम है। ठीक है, तो मुझे जिससे आर्टिफिशियल पन आने लगे ना, इसी पे फिर एक और बात दिमाग में आ गई है, दुआ कराना, शेरों में दुआएं करना, रोना और रोलाना, और बाज लोग पूरे शेर पढ़ते हैं, आ गया तेरे दर पे, और ये और वो, जिस चीज में मुबालगा आ जाए, आर्टिफिशियल नस आ जाए। एक है जो खुद आपके दिल की जुबान बन के आपकी जुबान पे आ गया, वो और बात है, लेकिन सोचना, तैयारी करना। मुझे कुछ महफिलों में ऐसे जाने का इत्तेफाक हुआ कि लोग बैठते हैं, सब पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं बस वो इनको हमने दुआ के लिए बुलाया हुआ, दर्स वाली बाजी आई हैं, तो इनकी दुआ सुन लें फिर आपका दर्स शुरू कराते हैं। उतनी देर में बाजी जो होती है वो पर्स में से एक पर्चा निकालती है, फिर अपने सामने रखती हैं, पूरी लिखी हुई दुआ होती है शेरों की सूरत में, और भी वो देख देख के पढ़ती और झूमती हैं, और लोग रोते भी हैं और मांगते भी हैं। तो अल्लाह के नबी को तसन्नो पसंद नहीं था। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी मुझे याद नहीं गालिबन सूरत नजम या कमर, उसी दौर की सूरतों के आखिरी सूरतों में कि वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं तकल्लुफ नहीं करता। तो भोले भाले सीधे साधे तरीके से गलत सीधी बात जो भी हो जाए वो चीज़ बहरहाल बेहतर है। चलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पूरी सूरत में जो हमने पढ़ा जो सीखा इसको हमारी ज़िंदगी में ढाल दे, और हकीकत में अंबिया कराम के मामले में जो कुछ हमने इधर देखा है वो हम सब के लिए काबिले में तकलीद है। अल्लाह ताला हमें उन थोड़ों में कर दे जिन्होंने अल्लाह के नबियों के पैगाम को माना, और उस भीड़ और उस बड़ी जमात होने से बचाए कि जो नबियों के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।